वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महामदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रधायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्ये गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो गिरः कातरयाय महा पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतर्जनम् तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञानाभि तं नयमाम चरणान्तिके भक्त्या विना अपराधलक्ष्य चित्तस्य कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। सर्वप्रथम मैं अपने परमात्मा आराध्य नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्सम भक्ति प्रज्ञान के स्वरूप स्वामी महाराज श्री चरण कमलों में असंख्य दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूं। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टम ओम विष्णुपाद अश्वत्तर सहस्र भक्ति दैत्य माधव गोस्वामी जी के चरणों में भी मैं दंडवती प्रणति करता हूं। आज हम लोगों का परम सौभाग्य है परम सौभाग्य है कि पुरुषोत्तम महीने में पुरुषोत्तम धाम में पुरुषोत्तम जगन्नाथ देव के निकट में विशेष करके श्री भक्ति विनोद ठाकुर की भजन कुटी में श्री जगत गुरु ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति श्री सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के आविर्भाव स्थली में हम लोग उपस्थित हैं। बहुत सौभाग्य की बात है। ये सब
very close to Purushottam Dev, Sri Jagannath himself. in this month, Purushottam Mass, to perform Purushottam Vrata, and especially to have the shelter of this particular place, which is the divine auspicious appearance place of Nityananda Krishna Vishnu Pada Srimad Bhakti Siddhanta Sahasrara Thakur, Srila Prabhupada. And Bhagavan Kutira Srila Bhaktivinoda Thakur.
गीता के अनुसार खर अक्षर पुरुष और इसके बाद में पुरुषोत्तम खर अक्षर और पुरुषोत्तम खर से अपने स्वभाव से अपने स्वरूप से खरित होने वाली अर्थात जीव मात्र का स्वरूप है कृष्णदास। उस स्वरूप से जो च्युत हो जाते हैं उनको खर पुरुष अर्थात बद्ध जीव कहते हैं, और जो अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते ऐसे जीवों को मुक्त जीव कहते हैं। इन दोनों जीवों से ही उत्तम पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम इसलिए कृष्ण ही गीता के पुरुषोत्तम है।
लोके वेदेश प्रथित पुरुषोत्तम,
इसलिए पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, अढ़ाई वर्ष के बाद में करीब करीब एक लीप ईयर होता है जिसको लौंद कहते हैं, जिसको मलिन, जो समस्त महीनों का मल है, उस महीने में विवाह शादी यज्ञोपवीत और कोई भी स्मार्ट क्रियाएं नहीं होती है, सब कुछ बंद होता है। इसलिए वह मलिन मुख होकर यह महीना, समस्त महीनों के एक एक अधिष्ठात्री देवता होते हैं, कार्तिक श्रीमती राधिका जी हैं, तो ये महीना प्रभु के पास में गया, पुरुषोत्तम कृष्ण के पास। मुझे प्रभु, जगत के सभी लोग हमसे घृणा करते हैं, कोई भी शुभ कार्य इस महीने में नहीं होता, समस्त महीनों का वर्ष का मल एकत्रित होने पर ये कहा जाता है मैं आपके शरणागत होता हूं, मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तुम शोक मत करो, तुम्हारी समस्त मलिनता हम ले लेंगे, और इसी महीने में तुम्हारा तुम शरणागत है, इसलिए मैं ही तुम्हारे इस महीने का पुरुष अधिष्ठात्री देवता होऊंगा, और मैं ही पुरुषोत्तम रहूंगा, और इस महीने को लोग पुरुषोत्तम करेंगे, और पुरुषोत्तम धाम में इस व्रत का सभी लोग पालन करेंगे। उसकी भगवान ने इच्छा पूरी की, तब से स्मार्ट क्रियाएं नहीं होती, जैसे चातुर्मास में विशेष करके कार्तिक महीने में जो जो नियम है इस महीने में भी वही नियम है। इसमें वर्णाश्रम धर्म के कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, इसलिए ये महीना शांत होता है। इसमें थोड़ा भी कोई नियम व्रत करे पुरुषोत्तम देव का, कृष्ण का, एकांतिक ब्रजेंद्र नंदन का, तो उसकी सिद्धि होगी। विवाह का झंझट नहीं, उपनयन वो भी तौर और जितने भी शुभ कर्म है, दान है, पुण्य है, लोग नहीं करते। किंतु इस महीने में यदि कोई हरि गुरु वैष्णव की सेवा करे, उत्तम व्रत धारण करे, भगवान का नाम करे, विशेष करके पुरुषोत्तम क्षेत्र में हो, पुरुषोत्तम के निकट में, कृष्ण के निकट में, तो उसकी सारी वांछाएं पूर्ण हो जाती है। यदि कृष्ण नहीं भजन हुआ तो दान पुण्य से और वर्णाश्रम धर्म की रीतियों से, पवित्र और विवाह से मतलब क्या है? और यदि ये भी नहीं हुआ किंतु भगवान की प्रसन्नता हो गई तो सभी कुछ की सिद्धि होगी। इसलिए आप लोगों को मैं बहुत ही सौभाग्यवान समझता हूं कि इस क्षेत्र में जगन्नाथ जी के निकट, श्रील प्रभुपाद के आविर्भाव जगह में, परम पूज्यपाद ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद माधव गोस्वामी भक्ति दल माधव गोस्वामी महाराज जी के आश्रय में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। 15 दिन का हम लोग पूरा व्रत करेंगे और साथ ही साथ में हम लोग दर्शन भी करेंगे। सवेरे और ये सूटर देंगे।
Hare Krishna. First of all, Srila Gurudev explained that in chapter 15 of Bhagavad Gita, there Krishna describes three types of personalities: Kshara, Akshara, and Purushottam. So, what does Kshara mean? It means that Kshara means fallible. In other words, those jivas, those living entities, who by nature, of course, all living entities, they have a swarup, which is to be the eternal servants of Krishna. But those who have forgotten, they have lost the knowledge of their own identity, their own swabhav, their own nature, that is now hidden by the mature energy. Those jivas, they are called Kshara Purush, the fallible living entities, or Bandhajiv, conditioned souls. On the other hand, there is another type of living entity Krishna calls Akshara, infallible. They are the Akshara Purush, or Mukta Jiva, the liberated souls. Because they are fully aware of their identity, their Swarupa as the eternal servants of Krishna. So after describing Kshara Purush and Akshara Purush, Krishna explains that above all of those, the supermost personality is there. He is superior to all the jivas, and therefore he is called Purushottama, the supreme Purush. Krishna explained there, I am that Purushottama, the supreme personality of Godhead. So Krishna is referred to as Purushottama in Bhagavad Gita. So this month, Purushottam month, it comes in the leap year. Every 32 months, then this month comes. Previously, it was known as Mal Mas. Mal means unclean, contaminated, rejectable, the rejectable month. So why? Because during this month, the Shastra said, you should not do any smarta kriya, any ritualistic activities such as getting married or yagyopavit, receiving sacred thread according to the principles of Varnashram Dharma. So all of these materially auspicious activities, shubha karmas, they all stop during this month. No one should perform any of them. So this month was known as Mal Mas, contaminated month. So this month personified approached Sri Krishna and said to him, "Oh my Lord, in this world all despise me, all condemn me, because they cannot do any Shubha Karma, auspicious karmas. So I am taking complete shelter of you. I surrender to you. What can I do?" So Krishna explained in Gita, "Sarva dharmam parityajya mam ekam sharanam braja, aham tvam sarva papebhyo mokshayishami ma sujaha." Give up all types of dharma, material dharmas, and surrender to me unconditionally. I will protect you from, I will take away all sinful activities. Do not fear. So Krishna, he told Mal Mas, "I will take away all contamination because you have surrendered to me. And I myself will become the Adhishtatri Devata, the predominating deity of this month. So from now, all the people will not call you Mal Mas, but Purushottam Mas. And during this month, they will observe Purushottam Vrat, very auspicious activities of devotional service in Purushottam Khetra. So this month, it should be observed as one follows the niyam, the rules and regulations related to Kartik, the month of Kartik, of which Radhika is the predominating deity. In the same way, Purushottam Das should be observed. One should not perform any Shubha Karmas, but instead of being derailed into material activities, one should become one-pointed and do aitantik brata, one-pointed vows for the happiness of Krishna. Only perform Hari Guru Vaishnava Seva and chant Harinam and stay near Purushottam Dev. And those who will observe this brata, it is certain that all their desires will be fulfilled. If one does not do bhajan, then all Shubha Karma, all the so-called auspicious activities of this world, such as performing duties within Varnashram Dharma and getting married, they have no value if Krishna is not pleased. Therefore, all of the devotees who have assembled here to observe Purushottam Vrat in Purushottam Khetra, in the birthplace of Srila Bhaktisiddhanta Sasari Thakur, they are supremely fortunate.
कल से 15 दिन तक का हम लोग अंतिम व्रत करेंगे। आरती के बाद में आप लोग यहाँ पर बैठ करके कीर्तन करेंगे और कुछ प्रवचन होगा। 7 बजे यहाँ से 6:30-7 में 6:30-6:30 बजे हम लोग यहाँ से निकले हैं।
7 बजे
हाँ
7 बजे तक प्रवचन है, इसके बाद में सुबह की
बात। मंगल आरती के बाद में तुम लोग अपना कीर्तन करो जैसे प्रति सब जगह होता है। और यहाँ का करो 7 से, और जब बाहर में जाएंगे कहीं तो आरती के बाद ही मैं कीर्तन करके दर्शन करूंगा। कुछ नियम भी पालन होना चाहिए कीर्तन कीर्तन। कल सवेरे हम लोग आरती होगी, आरती बाद बैठ करके जो हम लोगों का कार्तिक महीने का जो कीर्तन होता है वो कीर्तन करना, और कीर्तन करने के बाद में संक्षेप में कुछ हो तो बोलना, और नहीं तो फिर 6:30 बजे निकल जाना। और कल हम लोग यहाँ से जाएंगे गंभीरा में, पहले महाप्रभु के यहाँ जाना है, और वहाँ के संक्षिप्त चरित्र के संबंध में राधाकांत मठ में कुछ वहाँ पर हम लोग बतलाएंगे, और उसके बाद में हरिदास ठाकुर की सिद्ध बकुल, वो पहले न वो पहले पहले गंभीरा नहीं चले, और पैदल तो हम लोग हैं, सब लोग फॉलो करेंगे, जो पैदल नहीं चल सकेंगे वो लोग रिक्शे से जाएंगे, दो दुकान
वो
हाँ इट इज नियरर टू ऑल प्लेसेस नो हाउ, और इसके बाद वहां से आकर के 10 बजे तक कल हम लोग गंभीरा सिद्ध बकुल, फिर वहां पर सार्वभौम भट्टाचार्य जी का स्थान, गंगा देवी श्वेत गंगा और जगन्नाथ जी का दर्शन, बस इतना ही का तो जाएंगे नहीं तो हाँ विदेशी लोग नहीं जाएंगे, दोस्त हुआ प्योर फॉरन, बट दोस्त हुआ डोमिसाइल्ड इन फॉरन कंट्रीज इन हॉलैंड हियर एंड देयर, बट ओरिजिनली देयर एंसेस्टर वेर फ्रॉम इंडिया, लाइक दामोदर हिज वाइफ भक्त स्वरूप अदर्श दे आर अलाउड टू गो, एंड फॉर अदर्श जगन्नाथ इज वेरी 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 मर्सीफुल, कॉजलेस मर्सीफुल, इन ए ईयर ही कम्स ऑन गुंटीचार टेम्पल रथ यात्रा फेस्टिवल एंड ऑल कैन, बट आई रिक्वेस्ट यू टू फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ हरिदास ठाकुर सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी, हरिदास ठाकुर नेवर ट्राइड टू इंटर इन टेम्पल, बट एट द टाइम ऑफ गॉड फेस्टिवल नो वन कैन ignore him and check him. He used to dance here and there with Mahaprabhu. So you are also very fortunate you can see like that. And I hope that you will follow the path of Srila Rupa Goswami, Sanatan Goswami, Haridas Thakur and others. Aap log Patit Pavan Ji ka wahan par darshan kar lenge. पतितों के लिए वहीं पर आए हैं, उसके भी बड़ी लंबी चौड़ियां सब कहानियां हैं ये किस प्रकार से है। तो इस तरह से प्रतिदिन हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग दर्शन करेंगे, 10 दिन के अंदर में हम लोग सारे दर्शन समाप्त कर देंगे और 5 दिन फिर यहीं पर रहेंगे, 10 कल तो 5 है, 15 तारीख तक हम अपनी सारी परिक्रमा पूरी कर लेंगे, जो जाना कुछ लोग जाना चाहते हैं तो उस समय में परिक्रमा पूरी हो जाने पर जा भी सकते हैं, और जो रहेंगे सो तो हम लोगों के साथ में यहाँ पर करते हम लोग का जो पाठ होगा, यहाँ के महाराज जी भी इत्यादि हैं, इन लोगों को भी पाठ करने का समय देंगे, 3 बार पाठ होना चाहिए। हम गुरु जी के साथ में हम लोग आए थे पुरुषोत्तम व्रत में, 1 महीना थे, 2-2 बार उनके साथ में हम आए हैं, और उसी समय में हम लोग अलालनाथ और कहाँ भुवनेश्वर और कोणार्क सब जगहों में हम लोग गए हैं, और यहाँ के तो स्थान हैं लोकनाथ महादेव और सब, ये सब का दर्शन किए हैं, तो ये सारी ठीक उसी तरह से हम लोग व्रत करेंगे। विशेष करके हमारे संप्रदाय के धन्यवाद के पात्र हैं परम पूज्य पाद नित्य लीला प्रविष्ट ओम भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज, जो इस स्थान के लिए बहुत कुछ किया, बहुत लड़ाई धड़ाई मामला मुकदमा सब होने पर भी, और उनके बाद में उनके वारिस लोग भी इस स्थान के लिए बहुत मामला मुकदमा करके चारों तरफ से परिष्कार हो गया है और यहाँ से बहुत प्रचार हो रहा है और ये लोग प्रभुपाद की धारा में प्रतिष्ठित हैं। इसलिए हम लोग भी अपने गुरुदेव जी में और पूज्यपाद माधव महाराज जी में बहुत बनती थी, गुरु भाई थे हमारे। गुरु जी को सीनियर विनोद दास सभी लोग कहते थे और सभी लोग बहुत सम्मान देते थे। तो हम लोग भी उन्हीं की धारा में पुरुषोत्तम व्रत का यहाँ पर पालन करें। कार्तिक महीने जैसा ही सब कुछ है। अधिवास तिथि है। इसलिए हम लोग पाठ तो कल ही से करेंगे। उनका राय रामानंद संवाद महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य जी के कहने से राय रामानंद से मिले गए। सार्वभौम भट्टाचार्य जी शंकर के थ्योरियों पर चलते थे पहले और उनका बड़ा सम्मान था। बड़े बड़े सन्यासी लोग भी जोगपट्टे इनसे लेते थे और एक संप्रदाय से श्रेष्ठ संप्रदाय में भी देने का अधिकार रखते थे। बहुत प्रकांड विद्वान और दार्शनिक थे। इसलिए राय रामानंद जी को आदर तो करते थे किंतु विचारों का उस समय मतभेद था। जब सार्वभौम भट्टाचार्य जी को उनके घर पर वेदांत श्रवण किया और उसका खंडन किया कि आप उनको निर्विशेष सत असत अनर्विशेषत्व
उनका कोई विग्रह नहीं मानते। 7 दिनों तक मौन होकर के श्रवण किया उनका वेदांत भाष्य। 7 दिन के बाद में सार्वभौम भट्टाचार्य जी कुछ आश्चर्यचकित हुए। ये तो हाँ भी नहीं बोलता, न भी बोलता है, न सो कोई शंका करता है, न मुख का कोई आकृति विकृति होती है जो हंस रहा है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, कुछ भी नहीं करता, चुपचाप बैठा हुआ है। ये समझता भी है कि नहीं, इसलिए उन्होंने पूछा 7 दिन तक हमने वेदांत का भाष्य तुमको सुनाया, जन्मादर्श से जत इत्यादि शास्त्र जोनी का और सब जब सुनाया और निर्विशेष खंडन किया, इस विशेष बात की स्थापना की और वेदांत के श्लोकों का उल्टा अर्थ किया, उन्होंने कहा जब भगवान का रूप नहीं है इसलिए बहुत वेदांत के सूत्र उन्होंने दिए। महाप्रभु से पूछा जी तुम समझते हो या नहीं समझते हो, गोपीनाथ जी ने पहले ही उनसे कहा था, गोपीनाथ आचार्य महाप्रभु के प्रभाव को जानते थे, ये स्वयं भगवान कृष्ण ही हैं, राधा भाव दूत सुबलित हैं। उनका चाहे आप उनको वेदांत पढ़ाना चाहते हैं, महाप्रभु उनका जी हमारे पिता और गुरु तुल्य हैं, मैं इनसे वेदांत सुनना चाहता हूं, उनका अभिमान दूर करना चाहता हूं। बृहस्पति के समान विद्यालय थे तो महाप्रभु जी ने कहा आप जो वेदांत सूत्र बोल रहे हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा और जो सूत्र बोल रहे हैं उसमें तो अर्थ एकदम जैसे सूर्य चमकते हैं तो झलमल करते हैं तो सूर्य जैसे दिखाई देते हैं, किंतु आप जब व्याख्या करते हैं तो ऐसे मालूम होते हैं सूर्य को किसी ने ढक दिया, बादलों ने मेघों ने गिर, उन्होंने कहा है अभी तक तो हमारी व्याख्या को कोई खंडन करने वाला नहीं था, कौन सा सूत्र तुमको नहीं, उन्होंने आपने आदि से अंत तक जितने भी सूत्र सब उल्टा आपने किया, जो तो मानी भूतानी जानते जैन जातानी अभी संभिशंति तद ब्रह्म तद ब्रह्म, जिसमें सारी क्रियाएं उस कारकों के चिन्ह लगे हुए हैं और उसको आप निर्विशेष कह रहे हैं, समस्त शास्त्रों में इसको बतलाया गया भगवान का रूप है और वह सच्चिदानंद रूप है, वो वेदांत सूत्र एक है ना, और उपवत ही तत्प्रधानत्वात्, उन्होंने कहा सार्वभौम भट्ट और उपवत है वही, महाप्रभु जी ने कहा इसका उल्टा अर्थ क्यों कर रहे, मैं क्यों क्यों अच्छा भी कर और उपवत न रूपवत रूप एव स्वयं रूप और उपवत नहीं और उपवत नहीं, अर्थात तो रूप के समान है ऐसा मत कहो, वो स्वयं रूप है कृष्ण, अपाणि पादो जमना गृहिता पश्चात अचक्षु सुनो तकर्ण इत्यादि में भी बतला है। इसका तात्पर्य क्या है, उसके सर्वत्र कान है, सर्वत्र देखता है, उसमें क्रियाएं निष्पन्न होती हैं, उसको तुम निर्विशेष क्यों कर रहे हो, इसलिए जितने भी विचार उन्होंने कहा सबका खंडन बंडन किया। और इतना ही नहीं, आत्मा रामस्य मुनयो अपि उरुक्रमे कुरुवंत है तो किं भक्तिं इत्तम भूत गुण, इसके द्वारा ही महाप्रभु जी ने और स्थापित किया, उन्होंने कहा जे उनका रूप नहीं है और उन्होंने ये बतलाया। क्या श्लोक पढ़ा, श्लोक आत्मारामस्य मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे निर्गंथा मने क्या मुक्त हो गए देह की वासना और दैहिक कर्मों से सब प्रकार से वो मुक्त हो चुके हैं। वे लोग इथम्भूत गुणो हरि, उस हरि का इतना गुण है कि वो लोग भी उसका भजन करते हैं और लोगों की तो बात क्या। सुखदेव गोस्वामी जैसे लोग, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जैसे लोग, वो लोग भी उनके गुणों से आकर्षित होकर क्या। गुण तो गुण है, गुण भी सच्चिदानंद है। गुणों में कृष्ण के और गुणी में कोई अंतर नहीं है, भेद नहीं है, यही सब शास्त्र कहते हैं। और शास्त्र साथ में उनको कितना अष्टभुजा न षडभुज रूप दर्शन करें। षडभुज रूप कौन सा? कृष्ण बंसी लिए हुए हाथ में और राम धनुष बाण धनुष लिए और दंड कमलों महाप्रभु का एकदम देख करके अचेत हो गए और उनको पूर्ण विश्वास उनके चरणों में गिर गए। महाप्रभु जी ने परीक्षा के लिए जगन्नाथ जी का प्रसाद गए थे, भोर में प्रसाद दिया पुजारी ने, अपने थोड़ा सा लिया और सब इनके पास में आए सार्वभौम भट्टाचार्य। महाप्रभु के जाने के बाद में उठे, उन्होंने प्रसाद दिया, अब उनको पूर्ण विश्वास हो गया जगन्नाथ जी के प्रसाद में। और जगन्नाथ जी ने तो वो उनको भी निर्विशेष मानते थे, जगन्नाथ जी को भी निर्विशेष ब्रह्म मानते थे। वो पंच उपासना जैसे वो लोग करते हैं, पंच उपासक, उसमें शैव शाक्त शौर्य गणपत्य और उन्हीं में से सभी और सर्वम खल इदम ब्रह्म इसको माने। और एक दिन में पलट गए और साथ ही साथ में दूर से लाया गया हो प्रसाद, बासी हो, सड़ा गला भी आ, कुकुर के मुख से भी यदि स्पर्श हो गया है उस प्रसाद को, सच्चिदानंद मान करके तुरंत उसे प्रसाद और कह करके, बल्कि जब भक्ति की इतनी प्रतिष्ठा जबकि सुनी उन्होंने तो मुक्ति पदेश दाय भाग उसको बदल दिया, भक्ति पदेश दाय भाग कहा। क्या है श्लोक? तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपापम् धन नमस्ते जीवित जब मुक्ति पदेश दाय भाग। तो उन्होंने लगा दिया जी भक्ति पदेश दाय, उनको अब सुनने में भी मुक्ति घृणा घृणित लगने। महाप्रभु जी ने कहा देखो तत्ते नुकंपा, भगवान का भजन करते समय में इस जगत में दैहिक कुछ कष्ट आएंगे, जगत ही ऐसा बना है, काल का विक्रम ही कुछ ऐसा है, तुम्हारे ऊपर कष्ट आएंगे, उसको अपने पूर्व जन्म कृत कर्मों का फल मान लो और इससे अधिक भगवान की कृपा उसे मान, उसे घबराओ मत, उसे दूर करने की चेष्टा मत करो, भगवान की कृपा मान करके उसे सह लो। और जो ऐसे सह करके भगवान का भजन करता है मुक्ति पदेश दाय भाग, उन्होंने कहा नहीं भक्ति पदेश है। महाप्रभु जी ने कहा नहीं, मुक्ति जस्य पदे भक्ति पदे सदाय भाग, उसका अर्थ ठीक है, भागवत को बदलने की जरूरत नहीं है, भागवत ठीक लिखता है। इसलिए मुक्ति भक्ति के पद में, भक्ति करने से मुक्ति तो अपने आप आ जाती है, तभी नहीं भक्त लोग लेते हैं। ये मानव अपना ग्रहण के बिना मत से देने पर भी नहीं देते।
like today is Adivasi Day, or the day before we begin our Purkama. So during this Purkama, Srila Gurudev will explain Sri Vardhanananda Sambhad. So as an introduction to that Vardhanananda Sambhad, Srila Gurudev began to explain that Sri Chaitanya Mahaprabhu first heard about Vardhanananda from Sarvabhauma Bhattacharya. Sarvabhauma Bhattacharya is living here in Jagannath Puri, and he was teaching and following the Advaita Vedanta of Shankar Acharya. And he was so learned. He was such a great philosopher and so influential that great sannyasis would come to him and receive yoga bhaja vesh from him even. So when Sri Chaitanya Mahaprabhu met with Sarvabhauma Bhattacharya, he had respect for him, but he was of a completely different opinion. See, Sarvabhauma Bhattacharya, he wanted to teach Advaita Vedanta to Chaitanya Mahaprabhu. So he began to explain the theory of Shankar Acharya and his explanation of all the sutras of Vedanta. He explained that the Absolute Truth is Satasat Lakshana Anirvachaniya, indescribable. It's beyond the description of words. Mahaprabhu was sitting, and as Sarvabhauma Bhattacharya was explaining all day and night for 7 days in a row. But Sarvabhauma Bhattacharya was struck with wonder because Sri Chaitanya Mahaprabhu didn't move, he didn't ask a question, there was no expression on his face. So it wasn't clear to Sarvabhauma Bhattacharya whether Sri Chaitanya Mahaprabhu could understand what he was explaining or not. So then, Sarvabhauma Bhattacharya, he asked Mahaprabhu, oh, do you understand my explanation or not? Now, previously to this, Gopinath Acharya had spoken with Sarvabhauma Bhattacharya and tried to convince him that Chaitanya Mahaprabhu was the Supreme Personality of Godhead. Gopinath Acharya, the brother-in-law of Sarvabhauma Bhattacharya, he knew that Sri Chaitanya Mahaprabhu was Swayam Bhagavan, Radha Bhavajyoti Subhalitam, that he was Krishna himself, adorned with the sentiments and complexion of Srimati Radhika. But Sarvabhauma Bhattacharya, though he was so learned, he is an incarnation of Brihaspati, he could not understand the advice and explanations of Gopinath Acharya. So Sarvabhauma Bhattacharya had explained to Chaitanya Mahaprabhu that Bhagavan has no form, no qualities, no pastimes, is nirvishesh. So Chaitanya Mahaprabhu told him, oh Sarvabhauma Bhattacharya, the sutras of Vedanta, they are self-effulgent, self-evident, like the sun. But your explanation is just like black cloud covering the sun. When Sarvabhauma Bhattacharya heard this, he said, oh, until today, no one has been able to refute my explanations. So I want to hear your explanation. Then Sri Chaitanya Mahaprabhu began to explain all the sutras of Vedanta. First of all, Janmadya Sriyayataha. Brahma is that from which everything has emanated. So he gave Praman, evidence from the Vedas. Yatova Imami Bhutani. Everything is emanated from Brahma. Everything is resting in Brahma. Everything enters into Brahma. So how can it be that that personality from whom all forms have come, he himself can have no form? This is not possible. Bhagavan has Satchidananda Vigraha, as explained in Vedanta Sutra. Arupavat Edahi Tatpardana Tvat. Arupavat. Not that Bhagavan has no form, but Arupavat. What is means? This pratyaya means tulya, like. He is not like a form. No. His form is the form of Bhagavan, the murti. This vigraha is not a symbol of something else. So arupavad eva He is not like the form of the deity. He tat pradhanat pat. That form is directly himself. Swayam Rup. Marco explained from the Vedas, the Pani Pado. The Vedas say he has no hands, but he accepts offerings. It means he has no material hands, he has a transcendental form. And Marco explained from Srimad Bhagavatam, Atparamas Tulunayo Nigranta Apirupame Kuravanta Hoyti Kimbakti Isam Bhutta Dano Hari. What does Nigranta mean? Nigranta means those personalities who are completely mukta. They are totally liberated from this material world. Itam Bhutta Dano Hari. Bhagavan has so many wonderful qualities that those who are Nigranta, liberated, like the four Kumars, Sanat Sanami, Sanatana, Sanat Kumar, Shukadeva Goswami, and others, though previously they were absorbed in Nirvishesh Brahma, when they heard about the qualities of Sri Krishna, they became attracted because his qualities are transcendental and they are abhed, they are not different from him. In this way, Sri Chaitanya Mahaprabhu cut all the explanations of Sarvabhauma Bhattacharya and established the actual Siddhanta. Then he gave Sarvabhauma Bhattacharya darshan of his Sadbhuj Rup, his six-armed form. This six-armed form has two bluish arms of Krishna holding a flute, two arms of Lord Ramachandra holding a bow in one hand and an arrow in another, and two arms of Sri Chaitanya Mahaprabhu, one arm holding a danda and the other arm holding a water pot. So, in this way, Sarvabhauma Bhattacharya, he was completely transformed. One day, how was he? Oh, he was teaching Sarvam Kalvidam Brahma. Everything is Brahma. You can do Panchopasana. You worship Vishakta and worship Durga. Saurya, worshipping Shurdev. Ganapatya, worshipping Ganesh. Shaiva, worshipping Shiva. And Vaishnava, worshipping Vishnu. But actually, Sarvam Kalvidam Brahma, everything is Brahma. So one day he's teaching this, then afterwards he's completely transformed. Chaitanya Mahaprabhu gave some prasadam and Sarvabhauma Bhattacharya. He immediately accepted it without taking bath or doing any morning duties. And he gave command from Shastra. In Shastra it stated whether you pure or not, whether you take a bath or not, even if Mahaprasada has fallen from the mouth of a dog, when Mahaprasada comes, you should take it immediately. So we see how Sri Chaitanya Mahaprabhu completely transformed the personality of Sarvabhauma Bhattacharya. One day, Sarvabhauma Bhattacharya, he quoted verse of Srimad Bhagavatam, Tattenu kampam susamikshamano bunjana eva pakritam vipakam ribhag vapubi vidadam namaste jive te yo ends mukti padeh sadaiva. But he changed this verse to bhakti padeh sadaiva. Why? Because now his personality was changed so much. He could not bear to hear this name, Mukti Pade. Those who, they tolerate all the difficulties and problems of life, thinking that the difficulties are coming to me as the fruit of my own karma, and they instead engage their body, mind and words in praying to Bhagavan, what will happen to them? They'll get Mukti? He didn't like this. So he changed the verse to Bhakti Pade Sadaiva. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, oh, there's no fault in Srimad Bhagavatam. You should not change the verse. Mukti Pade is perfect. Mukti Pade means, oh, that Supreme Personality of Godhead, whose lotus feet are served by those living entities who are completely liberated from this world. So Srimad Bhagavatam gives correct conclusion that those who are addicted to the transcendental service to the Supreme Lord, even if they offered liberation, they don't accept it. Diyamana Nagranti Biramat Sevanajana. So, Sri Sarvabhauma Bhattacharya, being here in Puri, was completely transformed into a pure Vaishnava by the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. And it is from Sri Chaitanya Mahaprabhu, that Sarvabhauma Bhattacharya, that Sri Chaitanya Mahaprabhu first heard Rai Ramananda and decided to go to search out him and have his association. From tomorrow, Srila Gurudev will explain how Sri Chaitanya Mahaprabhu met with Rai Ramananda and what was the subject matter of their discussion.
Krishna Das, Pranamami Sada. अच्छा पढ़ो, अभी अभी आरम्भ कर दो, कुछ साढ़े छटा पौने सातटा पढ़ो।
Thank you.
Thank you.
अष्टम परिच्छेद चैतन्य चरितम मध्य राय रमण संवाद। आज थोड़ा सा मुख बंद कर दो। संचार्य रामा विद भक्त मेधे स्वभक्ति सिद्धांत चयामृतानि गौराधरे तई अमुना वितीर्ण तज्ञत्व रत्नालतायन प्रयाति। ये कृष्णदास कविराज मिश्रा इस श्लोक में राय रामानंद संवाद को प्रणाम कर रहे हैं और सूत्र में ये दे रहे हैं कि इस अध्याय में हम लोग इसका वर्णन करेंगे। संचार्य रामाभिद भक्त में दे भक्ति के जितने प्रकार के सिद्धांत हैं वो सिद्धांतों के समुद्र श्री चैतन्य महाप्रभु राधा भाव दूत स्वबलित कृष्ण स्वरूप ही सचिनंदन गौर है। उन्होंने रामाभिद भक्त मेधे रामानंद नामक भक्त रूपी मेघ में जैसे पानी संचार होता है मेघों में अलक्षित रूप से सूर्य की किरणों के द्वारा चैतन्य महाप्रभु अखिल प्रकार के जितने भी ज्ञान हैं तत्व हैं इस सब तत्वों के समुद्र है चैतन्य महाप्रभु। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जो नहीं जाना। अलक्षित रूप में मालूम होता है महाप्रभु जी ने प्रश्न पूछे और उन्होंने बतलाया उसका उत्तर दिया। किंतु राय रामानंद स्वयं कह रहे हैं जो मैं कुछ बोल रहा हूं उसके वक्ता मूल हृदय में प्रेरणा करने वाले आप हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जितने भी जानने योग्य तत्व हैं समस्त तत्वों के अखिल समुद्र हैं और उस समुद्र में क्या है स्वभक्ति चिंता सिद्धांत मृता चयानी सिद्धांत अमृत चयानी। उनकी भक्ति जो है वो दो रूपों में है भक्त में संचरित होती है राय रामानंद रूपी मेघ में। पानी अर्थ यदि रखा जाए अमृत का तो जैसे समुद्र का पानी सूर्य किरण के रूप में अलक्षित रूप में मेघ बन जाता है और वही स्वाति नक्षत्र में जब बरसता है तो समुद्र जैसे रत्नालय कहलाता है उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु समस्त सिद्धांतों के जल स्वरूप यहां कहो किंतु उसका प्रसिद्ध अर्थ है अमृत। भक्ति को रस कहा गया है कोई है तो तुम्हारा भक्ति रस है इस श्लोक भक्ति रस स्वरूप है रसई हे आनंद रसो वैश तो जहां पर मुख्य अर्थ नहीं लगाते हैं किसी कारण से असुविधा है वहां पर गौण अर्थ लगाया जाता है किंतु भक्ति तो स्वयं रस स्वरूप है। विशेष करके अनुकूलेन कृष्ण सुलनम, ये रस स्वरूप है। भक्ति मैंने क्या, भक्ति मैंने होता है सेवनम, भज धातु सेवनम, जो अन्याभिलाषिता रहित ज्ञान कर्म आदि योग तपस्या व्रत स्वाध्याय संयम इत्यादि के द्वारा क्या ढकी हुई न हो, उसे कोई संसर्ग रहने वाली न हो, तब वो उत्तमा भक्ति कहलाए। वो भी तैल धारावत अविच्छिन्न गति से जब हमारी तन मन तन मन और वचन की जितनी भी चेष्टाएं हैं अनुकूल और प्रतिकूल रूप में और भावना, इसके द्वारा वैष्णव के अनुगत्य में तैल धारावत अविच्छिन्न गति से जब करते हैं तब उसको रसमयी भक्ति कहते हैं, उत्तमा भक्ति। उत्तमा भक्ति मैंने प्रेम, प्रेम रसस्वरूप, इसलिए कृष्ण की भक्ति प्रेम स्वरूप, इसलिए यही अर्थ उचित है। अमृतानी गौराब्धर एतई अमुना बेतीर्ण। अच्छा, स्वभक्ति मैंने क्या हुआ, स्वभक्ति मैंने महाप्रभु स्वयं सचिनंदन गौर है, राधा भाव में विभावित कृष्ण स्वरूप ही है, उनके विषय कृष्ण विषय, कृष्ण विषय दो प्रकार की भक्ति होती है, एक कृष्ण में जो भक्ति है और दूसरी भक्तों में जो आधार में है। आधार माने आश्रय, भक्ति का आश्रय कौन है, कृष्ण नहीं है, राधा जी आश्रय है, समस्त आश्रय में श्रेष्ठ है राधिका, यहां तक कि राधा चंद्रावली में भी ये श्रेष्ठ है। इनके अंदर में मदना खतक जितने भी भाव क्रोड़ीभूत होकर के हो सकते हैं, देव बिन बात से लेकर के जितने भी यह रसपूर्ण जो भक्ति है वो सब चैतन्य महाप्रभु जानते हैं सभी। किंतु एक चीज है, कृष्ण तो भक्ति के विषय है, रस का आस्वादन करते हैं, उस भक्ति की हमें जरूरत नहीं है, हम भक्ति के कभी भी विषय नहीं हो सकते, इसलिए आश्रय हो सकते हैं। और आश्रम में सर्वश्रेष्ठ राधिका जी हैं, समस्त भाव उनमें हैं, उनमें भी कुछ ऐसे भाव है, चैतन्य महाप्रभु जानते तो हैं किंतु अनुभूति नहीं है, ज्ञान उनका विज्ञान नहीं हुआ। कैसे, जवान अहम यथा भाव जद रूप गुण कारण का तत्र विज्ञानमस्तु मे अनुग्रह। नारायण के रूप में ब्रह्मा जी के हृदय में प्रवेश किया, यदि वो नहीं जानते तो प्रवेश कैसे कराएंगे, उनको अनुभूति कैसे कराएंगे। इसलिए तत्व ज्ञान के रूप में सभी कुछ उनमें है, कृष्ण में है, महाप्रभु में, सचिनंदन गौर हरि में है। किंतु ज्ञान और विज्ञान दो चीजें हैं। साधारण रूप में जनरल जब ज्ञान होता है तब उसको कहते हैं ज्ञान, किंतु विज्ञान में अनुभूति के साथ में जब राय रामानंद जी के यहां गए महाप्रभु, ये राय रामानंद कौन है, कहते हैं कोई कहते हैं कि ललिता, ललिता के कुछ भी और कुछ अर्जुन के और कुछ अर्जुना सखी के, और कुछ कहते हैं विषाद। तो इसमें से अर्जुन को छोड़ दो, तो रह गया कौन? विशाखा सखी, ललिता सखी और अर्जुनिया गोपी। इनमें भी विशाखा जी ही इनको अधिक रूप में समस्त मानते हैं, गौर गौरव देश देविका इत्यादि में विशाखा ही माना गया। अब ये राय रामानंद विशाखा जी हैं, इनके अंदर में जो कुछ ज्ञान है वो कहां से आया? महाप्रभु रूपी समुद्र से आया, और लोगों ने देखा नहीं, बाष्प रूप में सूर्य के किरणों के द्वारा मेघ बन गया, और मेघ बना तो महाप्रभु जी ने प्रश्न किया और उसका जो उत्तर दिया वो क्या हुआ? उसी की वर्षा जब उन्होंने की तो महाप्रभु जी रत्नालता को प्राप्त हुए, तत् समस्त विज्ञान को अनुभूति थी। किस प्रकार से? कल हम इसकी सुंदर और व्याख्या करेंगे, उदाहरण दे दे करके बतलाएंगे। आज मैंने मुख बंद किया, अब आरती का भी समय हो रहा है। देखो कृष्ण भक्ति में भी भक्ति दो प्रकार की होती है, हमने बतलाया है ना। बतलाया है कृष्ण की सखियां बहुत प्रकार की होने पर भी चार विभाग होते हैं। स्वयं रूप सखी जो राधिका जी की काय व्यू है, वो जीव तत्व की नहीं है, वो कृष्ण की परिकर स्वयं कृष्ण ही है। ललिता विशाखा इत्यादि ये राधिका जी की काय व्यू है, क्या है ना वो ब्रह्म संहिता का रूपताया कला आनंद आनंद चिन्ह में प्रतिभा एवं निज रूप तया, वो कृष्ण की कलाएं हैं, अर्थात राधा जी की कलाएं हैं, वो परिकर है, नित्य परिकर। इन परिकरों में भी एक स्वातंत्रमयी सेवा होती है ना, ललिता विशाखा की स्वतंत्रमयी सेवा है, जीव का उसमें अधिकार नहीं है। और कुछ ऐसे नित्य परिकर हैं वो काय राधिका के हैं, राधिका के, किंतु स्वतंत्र नहीं। ललिता विशाखा के अनुगत्य में परतंत्रमयी सेवा ये मंजरियों का है, जीव का इसी मंजरी में ही अधिकार है। ललिता विशाखा वाली स्वतंत्र सही बाबा में नहीं, इसलिए रूप परिकर होने पर भी काय भी होने पर भी राधिका जी की उनकी पारतंत्रमयी सेवा चैतन्य महाप्रभु जी ने इसी को इन अध्यायों में वर्णन किया है, जब उन्होंने बताया है कृष्ण तत्व, राधा तत्व, प्रेम तत्व और प्रेम विलास तत्व इत्यादि की बातें जो सबका सूत्र इस श्लोक में राय रामानंद ने वर्णन किया है। अब इसी को हम सूत्र रूप में रखते हुए जहां तक हो सकेगा 14-15 दिनों में हम लोग शाम के समय में इसी की व्याख्या करें। तारा रामानंद जी का स्वरूप क्या है और महाप्रभु जी का स्वरूप क्या है, हम इसको अच्छी तरह से समझ
So now Srila Gurudev is beginning the गौरानंद संवाद श्री चैतन्य का डायरेक्टर मध्य लीला चैप्टर 8 इन द वेरी फर्स्ट टेक्स्ट संचार्य रामापिद भक्त ने कहे स्वभक्त सिद्धांत चामृतानी वरत एका अनुनाभि जेनास रत्नावयतम प्रयाति इन दिस वर्स श्री कृष्ण दास खरवार को स्वामी ही इज गिविंग प्रणाम He is paying his humble obeisances to this Gauranga Sangha. He is explaining here that Sri Chaitanya Mahaprabhu, he is like the ocean of all Bhakti Siddhanta. And Ramananda Rai is like a cloud. As the water from the ocean, by the influence of the sun, rises invisibly and becomes a cloud. So there's a similarity between this and the relationship between Chaitanya Mahaprabhu and Vairavananda. It means that you cannot see with your eyes how the ocean becomes the cloud or infuses water into the cloud. So in the same way, you cannot see Because Sri Chaitanya Mahaprabhu is posing questions to Ramananda Rai, and Ramananda Rai is giving the answers. But actually, Sri Chaitanya Mahaprabhu, the ocean of all Siddhanta, is inspiring and infusing all these Siddhantas of Bhakti into the heart of Sri Ramananda. So here, so Bhakti Siddhanta Chayamritani, the Bhakti Siddhanta has been called Amrita, nectar. So, the primary meaning of Amrita, nectar, we will describe. And take a secondary meaning, Amrita also means rasa, because bhakti is called rasa. In the Vedas it stated, raso vai saha evayam, sa evayam lakunandi bhavati. That the Supreme Absolute Truth is full of rasa, he is the embodiment of rasa. And bhakti to him is also rasa sarup. This bhakti, the word bhakti comes from bhajdhatu, which means sevaya, rendering service. As Sri Rupa Goswami Pad explained, anyabhilashika shunyam, jnanaka matya navritam, anupulyena krishna anushyam bhakti uttama. When all the endeavors of the body, mind and words and transcendental feelings are performed exclusively for the pleasure of Krishna, for the benefit of Krishna, being under the guidance of Sadguru and Srila Vaishnavas. And when those activities, they have not even the slightest smell of material desire or coverings of karma, jnana and yoga, then this is called Uttam Bhakti. This Uttam Bhakti is Rasamaya Bhakti. It is Prema Bhakti. And that is the nectar here. So here, in this first verse, Sri Krishnadas Karavar Goswami Pad is explaining that Sri Chaitanya Mahaprabhu is like the ocean. And from the ocean empowers the cloud. But then the cloud, it rains. So if rain will fall down at the time of Swati Nakshatra, then something wonderful will happen. What will happen? The ocean will become full of jewels. Ratnalaya. Ratnalaya means it becomes the repository of jewels. So what is the relationship now? What is the similarity between the rain of Swati Nakshatra falling from the clouds and making the ocean become full of jewels? This point Srila Gurudev explains. We know that bhakti has two types. That is the type of bhakti performed by Vishai, the object of devotion, Sri Krishna, and by Ashwai, those who have love for Krishna, they are the embodiment or the receptacle of Krishna praying. So, Krishna, he is not the Ashwai Vigraha, he is Vishai Vigraha. His devotees are the Ashwai Vigraha, the embodiment of devotion to him. And out of all of the Ashwai, different types of shelters of bhakti, Srimati Radhika is the highest. She is supreme because she has Madanaki Mahabhava. In this Madanaki Mahabhava, all other types of transcendental emotions Loving sentiments to Krishna, they are included at once in this Mandanaki Mahabhava. So, Krishna, in Krishna Lila, he cannot understand this Mandanaki Mahabhava Pratika. So now Krishna has appeared, Radha Bhava Juti Suvalitam Nomi Krishna Sarupam. Krishna has appeared as Sri Chaitanya Mahaprabhu. Now he is appeared with the sentiment and complexion of Radhika. But one thing, he knows about Radhika's mood in this incarnation. He has gyan, knowledge, but he does not have vigyan, realization, anubhuti. So Srila Gurudev gave the example. When Brahmaji, he heard Chakrasloki Bhagavatam from Lord Narayan, then Sri Narayan, he said, Yavannaham yatha bhavo madhura rupa kamatmaka tatvai vata vidyana astu vaita nuga astu te madhura hat.
He said,
now, may I have explained these things to you and you have this knowledge, but by my blessings astu te madhura hat. By my blessings, may all this awaken in your heart as realization. So there's a big difference between knowledge of something and anubhuti, direct realization. So now, in the form of Chaitanya Mahaprabhu, Krishna, he has knowledge of Radhika's moods, but he's not realized them. And therefore, he's gone and he's approached Sri Rai Ramananda. Who is Rai Ramananda? Different persons, they have different visions. Some say Lalita Sakhi, some say his incarnation of Arjuna, one of the Pandavas, some say Arjuna Gopi, and some have said Vishakha. So in this case, we can give up the idea of Arjuna. The remaining moods, that of Lalita, of Arjuna Sakhi, and Vishakha remain, but we will put emphasis on seeing Rama on the right as Vishakha Sakhi. Therefore, Krishna, in the form of Chaitanya Mahaprabhu, has approached Vishakha Sakhi in the form of Rai Ramananda, and he's hearing from him. So, just as the cloud becomes infused with water from the ocean, rather than the Rai became infused with all Bhakti Siddhanta from the ocean Bhakti Siddhanta, that is, Sri Chaitanya Mahaprabhu. But just as the rain of Swati Nakshatra falls on the ocean, and makes it become full of jewels. So, when Ramananda Rai was answering the questions of Sri Chaitanya Mahaprabhu, then this guitar was like the rain, which caused Mahaprabhu the ocean to become full of jewels. What were those jewels? The jewels means the realization of the moods of Srimati Radhika, Vigyan. So, Bhakti has two types. The bhakti which is furnished by the object of love and the abode of love. Among the abode of love, then the sakis, the gopis of Krishna, there are many, many types, and there are many different types of moods. Lalita, Vishakha and others, they are eternally liberated, and they are non-different from Radhika. They are called Kaya-Vyuha-Rupa, the expansions of Radhika's own body. This has been described in Brahma Samhita, Ananda Chinmaya Rasa Bhavi Kabis Kabiya Eva Nija Rupataya Kalabi. They are the color of Krishna, and then Radhika is color of Krishna, and from her color many, many sakis have come. So, those who are the Kalabiya Rupa Radhika, they render service to Radha and Krishna, but their service is called Swatantra Mayi Seva. That means they render service independently, according to their own heart's inclination. So no jiva in this world has eligibility to attain this Swatantra Mayi Seva. But rather, they have eligibility to attain Paratantra Mayi Seva. Paratantra Mayi Seva means dependent service. In other words, to be under the guidance and render service to Radha and Krishna under the guidance of the Lalita and Vishakha. The jivas only have adhikar for this. So all these things will be discussed. Sri Chaitanya Mahaprabhu will hear this subject matter from Sri Ramananda.